حاجی صاحب، میں آپ سے اس رات کی تلخ کلامی کی معافی مانگنے آیا ہوں یہاں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔
میں حق بات سے ناراض نہیں ہوتا۔
السلام علیکم حاجی صاحب۔
شکریہ۔
ٹھیک ہے جی صاحب،
بہت شکریہ۔
اچھا، اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ زیبا کی خبر کیوں نہیں لیتے تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟
نہیں، ناراض کیوں ہوں گا؟
آپ نے اس کی خبر نہیں لی، اسی وجہ سے پریشان ہے۔
میں اپنی بیٹی کی خبر کیوں نہیں لوں گا؟
تو آپ اس کی خیریت کیوں نہیں معلوم کرتے حاجی صاحب؟
وہ اس لیے کہ آج کل میں بہت مصروف ہوں، مرضیہ اس سے بہت ناراض ہے، اس لیے مرضیہ سے دور رکھا اس کو۔
مرضیہ صاحبہ کی دوری سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کی نہیں۔ حاجی صاحب، آپ کو کوئی بھی کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ آج میں بھی تو زیبا کی خاطر یہاں آیا ہوں نا۔
زیبا ایک نہایت خوش قسمت لڑکی ہے، کیونکہ اسے تمہارے جیسا شوہر ملا ہے۔ خدا کا شکر ہے اسے تم جیسا شوہر مل گیا ہے۔
پتہ نہیں یہ تعریف ہے یا طعنہ ہے، لیکن جو بھی ہو، حاجی صاحب میں انصاف کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ زیبا کے لیے صرف آپ ہی بچے ہیں، اسی لیے آپ اس سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔
آخر کس طرح میں اپنی بیٹی سے غافل رہ سکتا ہوں؟
یہی سوال ہے جو بار بار میرے ذہن میں آتا ہے۔
اگر تم ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا تعلق کیوں ختم کرتے ہو؟ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔
نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایوان کا میرے پیچھے آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ صرف میرا نیا گھر دیکھنے آیا تھا اور کچھ نہیں۔ وہ مجھے میری ذات کی خاطر چاہے، اور کسی وجہ سے نہیں۔
ماشاءاللہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ جتنا تمہیں جانتی ہوں، مجھے یقین آتا ہے تمہاری اچھی تربیت ہوئی ہے۔ میں ان والدین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے تمہاری تربیت کی۔ اچھا، کھانا میرے ساتھ کھاؤ گی نا؟
نہیں، مجھے جانا ہوگا، مما انتظار کر رہی ہیں۔
چلو کوئی بات نہیں۔
بہت اچھے، رکتی ہوں۔
اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے، میں وہی بناتی ہوں۔
پر شرط ہے۔ میں بھی آپ کی مدد کروں گی۔
میں خود بھی یہی چاہتی ہوں بیٹا، مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میری بیٹی میری مدد کرے۔ لیکن تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے۔ چلو آؤ۔ ارے تم رہنے دو، میں اٹھا لوں گی میری بچی۔
کوئی بات نہیں،
آؤ، تم میرے ساتھ آؤ۔
ہاں بھائی، آپ آ جائیں۔
بہت شکریہ۔
35 نمبر کھڑکی پہ چلے جائیں۔
بڑی مہربانی۔
جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ۔ چلو جناب کمال صاحب۔
جی جی،
تمہاری ملاقات، آئیے 15 نمبر کھڑکی پہ۔
بہت شکریہ۔
کوئی بات نہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ملیا نہیں آئی؟
وہ آج نہیں آ سکی، تمہارے لیے پارسل بھیجا ہے، دیکھ لینا۔ گارڈ، تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے تم میری پوری بات تو سن لو۔
اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اور تم سناؤ، کیا حال ہے تمہارا؟
بات یہ ہے کہ آج مرضیہ صاحبہ ہمارے گھر آئی تھی۔
مرضیہ کون؟
تمہیں کیسے بتاؤں، مرضیہ صاحبہ ملیہ کی ماں۔
ملیہ کی ماں؟ کیسی عورت ہے وہ؟
مرضیہ صاحبہ ایک فرشتہ انسان ہے،
بہت اچھی خاتون ہے۔
میرا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی وہ، کتنا اچھا برتاؤ کیا انہوں نے مجھ سے۔ اس کے بابا یہاں آئے تھے، تمہیں یاد ہے؟
ہاں یاد ہے۔
معاف کرنا کمال،
میں جانتی ہوں تمہیں یہ لفظ پسند نہیں ہے۔
میری بھی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہاں لیکن پھر بھی شکر ہے ہماری بچی کو اچھا گھر آنا ملا ہے نا۔
ہاں ملیہ، اب ہماری نہیں رہی شاید۔
ایسا مت کہو کمال، ملیہ ہماری ہی بیٹی رہے گی۔
اب وہ اتنی مصروف ہوگی کہ اپنے باپ سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس۔
मैं उसको तुम्हारे पास मुलाकात के लिए भेजूंगी।
कोई जरूरत नहीं है, मत भेजना उसे। देखता हूँ वो खुद कब तक नहीं आएगी मुझसे मिलने।
ऐसा क्या हुआ है, इस तरह क्यों बोल रहे हो? तुम अपनी बेटी को नहीं जानते हो क्या?
ठीक कहती हो, शायद वो इस मुसीबत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी है। वैसे भी मुझ जैसा नालायक
बाप कब याद होगा उसे।
तुम बस करो कमाल, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसकी तरबियत की है, समझे?
तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो रियाना?
तुम खुद ऐसी बातें कर रहे हो।
जब से मैं यहाँ आई हूँ
मुसलसल उसके बारे में तुम उससे गिला कर रहे हो। तुम्हारी बर्दाश्त क्यों खत्म हो गई है कमाल?
तुम ही बताओ कैसे संभालूं मैं? मैं इस कैदखाने की तरह ही रजियत को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मलिया को नहीं बुला सकता।
मलिया को क्या, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो?
सोमवार का एक ऐसी बातें मत किया करो।
नाना, चुप हो जाओ, मेरी पास हो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
ठीक हो ना?
बिल्कुल ठीक।
कैसी हो? ठीक हो तुम? कैसी हो बताओ?
सब यही पूछ लोगी, चलो अंदर चलें। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी।
मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है।
बहुत शुक्रिया, माफ करना मैं तुम्हारी दावत नहीं कर सकी।
ये क्या बात हुई, मुझे तुम्हारा घर देखना था इसलिए आ गई।
तुम ऊपर चलो, वो इससे भी बेहतर है।
वैसे मुझे पता था कि तुम्हारा घर हमारे घर से बहुत प्यारा होगा।
मुझे यकीन है तुम्हें भी एक दिन बहुत बड़ा घर मिलेगा, और हो सकता है वो घर इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो।
नहीं भाई, हमारे लिए तो वही टूटा फूटा घर भी बहुत प्यारा है। अभी लगता है कि वो हमारे लिए गनीमत है। मालिक मकान ने कहा घर खाली करो।
अच्छा, अब तुम्हारे लिए दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, कब तक खाली करना है?
रहने दो जेबा, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आई, पहले ही तुम बहुत ज्यादा परेशान हो।
तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? मेहरदाद ने कुछ कहा?
मलिहा के बारे में बताया था उसने।
हाँ, ये मेहरदाद भी, उसने ये भी बताया होगा कि मलिहा के मिलने से मैं कितना परेशान थी।
देखो जेबा, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो बहुत खुश होती।
खातरा, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मलीहा के मिलने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे तो बेहद खुशी हुई है। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बात से मुझे तकलीफ होती है, उन छोटी बच्चियों की फीलिंग्स का क्या जो अपनी छोटी बहन के पैदा होने पर खुश तो हैं, हाँ, लेकिन उन्हें डर है कि उनके माँ बाप का प्यार उनके लिए कम ना हो जाए।
एक बहन के पैदा होने से माँ बाप के दिल में दूसरी बहन का प्यार कम थोड़ी हो जाता है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम ये सोचो कि तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत कुछ देगी।
मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी तसल्ली दोगी तुम।
अरे हाँ ना, तुम भी तो मेरी बहन हो, और जब से तुम मुझे मिली हो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बदल गई है मेरी जिंदगी।
शर्मिंदा मत करो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए।
ऐसी बात मत करो, बस इतना ख्याल रखना कि छोटी बहन मिल जाए तो मुझे मत भूल जाना।
ओ, तो तुम्हें हसद हो रहा है?
हसद? बिल्कुल नहीं। बहुत गौर करने के बाद समझ आया कि कहीं से वो मेरी भी तो बहन होगी, है ना?
हाँ, ये सही कहा। अच्छा, अब ये लो और फल खुद ही काट लो। चलो लो ना।
हाँ, मैं ले लूंगी, तुम रहने दो।
क्या हो रहा है? किसी को ढूंढ रहा है क्या?
अरे जाओ अपना काम करो।
ओए, मैं नीचे जा रहा हूँ, जरा जरूरी काम है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मांदू, ये खातून क्या कह रही थी?
कुछ नहीं, आपके बारे में पूछ रही थी।
तुमने क्या जवाब दिया?
कह दिया आप यहाँ नहीं हो।
ये तो नहीं बताया कि मैं यहाँ काम करता हूँ?
नहीं बताना था क्या?
बताने के बाद पूछ रहे हो तुम भी।
माफ कर दे वजमान भाई।
अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ। और क्या बताया तुमने?
कुछ नहीं, सवाल बहुत ज्यादा कर रही थी वो, बार बार पूछ रही थी वजमान यहाँ काम करते कब आएगा। अलबत्ता मैंने बार बार कहा कि मुझे नहीं पता।
वो मुझे छोड़ती क्यों नहीं
वजमान भाई? वो बुरी है क्या?
जाओ अपना काम करो।
वाओ, आपके हाथ का खाना खाने के लिए तो तरस रही थी मैं।
मुझे पता है कि मैं तुम्हारी अम्मी से अच्छा खाना नहीं बना सकती। खाना तो तुम भी अच्छा पकाती होगी।
नहीं, मेरे हाथ का खाना इतना खास नहीं होता, लेकिन मम्मा उनके हाथ का खाना वो तो जबरदस्त होता है। वैसे तो सभी माएँ अच्छा खाना पकाती हैं।
क्या सारी माएँ?
हाँ जी, सारी माएँ। आप भी तो माँ हो, मेरी माँ।
ये सुनने के लिए कब से तरस रही थी मैं, कान तरस गए ये सुनने के लिए।
लो, ऐसी क्या बात है? आज से मैं आपको दिन में 100 बार माँ पुकारूंगी, सारा दिन पुकारूंगी, मम्मा मम्मा, ठीक है?
हाँ ठीक है।
देखें, सलाद बनाना बहुत अच्छी सीख गई मैं अब।
हाँ देख रही हूँ।
खाना पक्का या नहीं?
और कैसे हो कामरान?
हाँ मैं ठीक हूँ यार, मैं जरा सा मसरूफ हूँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक सवाल पूछना था, नौशीन बाबा की दुकान पे क्यों आई थी?
तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मुझे क्या पता वो दुकान क्यों आई थी?
उसको पता नहीं था कि मैं यहाँ काम करता हूँ, तुमने या रोया ने बताया होगा?
देखो, नौशीन से तो मैं मिला ही नहीं, रोया ने बता दिया होगा क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, तुम तो जानते हो ना उन दोनों के बारे में।
अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, रोया से बोलो कि वो उसे मेरी तरफ से समझाए कि वो अब मुझसे मिलने की कोशिश ना करे।
नौशीन तुम्हारे अलावा किसी की बात नहीं सुनती, तुम उससे खुद बात क्यों नहीं कर लेते? अगर चाहो तो तुम दोनों मेरे घर आ सकते हो।
मैं उसे देखना भी नहीं चाहता।
तो फोन पे बात कर लो।
मैं उसकी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहता यार।
मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ।
नहीं समझते मेरे जज्बात। तुम अगर समझते तो कभी उससे मिलने की या फोन करने की बात कभी ना करते। कोई नहीं समझता मेरे जज्बात।
तुम जज्बाती क्यों हो रहे हो?
तुम ही बताओ वो मुझसे किस मुंह से मिलना चाहती है। हद हो गई है यार, आखिर वो लड़की मुझसे चाहती क्या है? मैंने बहुत मुश्किल से वो पुरानी यादें भुलाई हैं, समझ सकते हो तुम? समझ सकते हो?
दोपहर में अकेले खाना खाती हैं?
हाँ, जब घर पे होती हूँ तब। दोपहर में वो भी नहीं आते।
मैं ये सोच रही हूँ कि आज के बाद जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आ जाया करूँगी।
हमेशा मैं अकेली नहीं होती, जिस दिन ऑफिस जाती हूँ वहीं खा लेती हूँ। वहाँ सुमेरा होती है, तुम उससे मिलोगी तो खुश हो जाओगी।
हाँ हाँ, मिल चुकी हूँ।
मिल चुकी हो? कैसे?
जब ऑफिस आई थी, याद नहीं क्या?
तुम कब आई थी वहाँ?
हाँ, एक दिन आपके घर के पास आई थी, फिर ऑफिस पहुँचने तक आपका पीछा किया।
उसी दिन क्यों नहीं बताया तुमने?
नहीं बता सकी।
तुम अपना राज बता नहीं पाई, अकेले ये राज तुमने अपने दिल में छुपा के रखा।
जब मैं आपके कमरे में जहेज के लिए कर्ज लेने आई थी तो उस टाइम मेरा दिल चाह रहा था कि आपको जल्दी से सब कुछ बता दूं, हिम्मत नहीं हुई तो मैं वापस चली गई।
उसी दिन बता दी थी तुम? हाँ, मुझे अब थोड़ा याद आ रहा है, तुम शादी के कर्जे के लिए आई थी ना। मैंने कहा था जहरा जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती।
इसीलिए तबीयत खराब हुई थी?
तुम्हें पता चल गया था?
हाँ, फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी।
मैं क्यों तुम्हें उस दिन पहचान नहीं पाई मेरी बच्ची?
हाँ, उस दिन आप टेस्ट रिपोर्ट के इंतजार में थीं, मगर आपकी सोच और जहन में जेबा बसी थी। अगर मैं कुछ कहती भी तो आपको यकीन नहीं आता। जब जेबा ने आपसे कहा कि वो आपकी बेटी है तो आपको शक नहीं हुआ?
मैं उस दिन इतनी खुश थी कि किसी सूरत अपनी खुशी खोना नहीं चाहती थी। फिर तुम ही बताओ, मैं कैसे जेबा पर शक कर सकती थी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि जेबा ने ऐसे किया।
क्या आप उससे नाराज हैं?
रहने दो, मुझे मेरी बेटी मिल गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
एक दिन मैं आपके ऑफिस आऊंगी, उस दिन की याद ताजा करने के लिए।
हाँ, भूलना नहीं, आ जाना।
वो मुझे घर पे फोन करना था, मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी।
तुमने अभी तक नहीं किया फोन?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मलिया, कैसी हो बेटा? मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा खाना बनाया है, आओगी ना?
जी, खाना तो मैं यहाँ खा रही हूँ मम्मा के साथ, आज मुझे यहाँ रुकना पड़ा। तुम नाराज तो नहीं हो ना?
नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज़।
Thank you. आप चेकअप के लिए नेक्स्ट टाइम कब आएंगी?
मैं तो अभी भी यहाँ अपने शौहर के इसरार पर आई हूँ।
देखिए, इलाज के लिए आपका राजी होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, और हाँ, मुझे तो अब किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है।
वो क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वो सब तुम अब हम पे छोड़ दो। तुम खुद एक डॉक्टर हो और मेरी बातों को अच्छी तरह समझ सकती हो। आपकी भी ये ख्वाहिश होती होगी कि आपका मरीज आप पे भरोसा करे, इस तरह आप भी मुझ पे कर सकती हो।
मैंने कहा मैं बीमार नहीं।
ये तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। आपको अंदरूनी डिप्रेशन है जिसका इलाज बहुत जरूरी है।
ये तो बहुत पुरानी बात है
जी, लेकिन इसका इलाज तो नहीं हुआ ना। आपको बचपन से ही दुख मिलना शुरू हो गए थे। जब आप छोटी सी थी, आपकी माँ का इंतकाल हो गया, फिर आपके सौतेले बाप ने आपको यतीम खाने भेज दिया, यानी आपने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था।
लेकिन इन सब के बावजूद मुझे बहुत अच्छा घर मिला था, बहुत अच्छे थे वो, उन्हें बहुत जल्द खो दिया मैंने।
मैं ये बात समझती हूँ, इसलिए आप सोचती हैं कि जो माँ बाप आपको मिले हैं कहीं आप उनको भी ना खो दो।
मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, आप ये दोहरा कर क्या कहना चाहती हैं?
मेरा मतलब है कि आपने बचपन में ही उन अफराद को खो दिया था जिनको आप चाहती थी, जिसकी वजह से आपके दिल में खौफ पैदा हो चुका है, और आजकल के वाकयात की वजह से यह खौफ आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है।
उन लोगों को खो देना शायद मेरी किस्मत में था। किस्मत के फैसले मानना पड़ते हैं।
ये ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहे। आप इन मुश्किलात का मुकाबला करें। हम ये बात अच्छी तरह जानते कि ये बहुत मुश्किल है।
मैं मुकाबला करना चाहती हूँ। मैं दूसरे लोगों से प्यार और मोहब्बत की भीख मांगने के बजाय अकेली रहना चाहती हूँ। उन लोगों को खो देने के खौफ में जी नहीं सकती। मुझे तो इस बात का भी खौफ है कि मैं अपने शौहर को ना खो दूँ।
हाँ, ये वही तुम्हारे अंदर का खौफ है जिसका तुम्हें इससे मुकाबला करना है। मैं जानती हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई खौफ होता है, और इंसान उसका मुकाबला भी करता है। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हर इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ती ही है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, अगर आपके किसी मरीज को इन्फेक्शन होता है तो आप दवा लिखेंगी या उसको उसके हाल पे छोड़ देंगी? तो क्या ख्याल है, इलाज के लिए आएंगी आप?
अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगी। हेलो।
हेलो ज़ेबा बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? माफ कीजिएगा, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ।
तो क्या बाद में फोन कर लूँ तुम्हें?
नहीं नहीं, आपकी तबीयत कैसी है?
ज़ेबा बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है ज़रूरी, लेकिन अभी तो तुम घर पे नहीं हो।
जी, मैं घर जा रही हूँ, आप वहीं आ जाए।
मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की खबर पर जाना चाहता था फातिहा पढ़ने के लिए।
अम्मी की? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ दफन है, लेकिन हाँ, खातरा को पता होगा, मैं उससे पूछ के बता दूंगी आपको।
मांदू, जरा आके फोन उठा लो। देखो, अगर वो सुबह वाली मैडम हो तो।
पता है मुझे क्या कहना।
शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वो यहाँ है। सही साहब, पुलिस वालों का फोन है आपके लिए।
तो मुझे क्यों देख रहे थे तुम?
मैं तुम्हें कहाँ देख रहा हूँ पजमान भाई।
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब?
जी मैं ठीक हूँ।
बहुत ज़हमत हुई आपको।
नहीं, हमारा फर्ज था।
जी शुक्रिया। कुछ और बताया उसने जनाब?
सही साहब, मुझे लगता है हम कामयाब हो रहे हैं। उस ड्राइवर ने एतराफ़ कर लिया है, वो सरमत के लिए काम करता है।
मैं तो आपको पहले ही बता चुका था, अब हम सरमत को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ, उसे पता होगा कि वो कहाँ रहता है।
नहीं, उसे ये नहीं पता। सरमत ने उसे पैसे दिए थे कि वो आपकी दुकान से कालीन ले आए, और उसने ये भी बताया है कि सुपर हाईवे पे पहुंचकर उसने सामान दूसरी गाड़ी में रख दिया था।
वो आपको इस बात का पक्का यकीन है?
नहीं, वो एतराफ़ कर रहा है, हम और तफ्तीश करेंगे।
बहुत मेहरबानी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अगर उस चोर के बारे में आपको मजीद मालूमात मिले तो आप मुझे जरूर फोन कर लीजिएगा।
क्यों नहीं,
बड़ी नवाजिश।
कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था।
और कोई हुक्म?
जी नहीं, बहुत शुक्रिया।
अगर मेरी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा।
जी जी,
बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा।
आप भी।
फिर बात होगी। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
याली मदद।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है?
जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
हमारे अब्बा कैसे हैं?
जी वो भी ठीक हैं। जी वो गाड़ी ठीक कराने के लिए देकर आ गया हूँ मैं, जैसे ही गाड़ी तैयार हो जाएगी वो हमें खुद फोन कर देंगे।
बहुत शुक्रिया बेटा, एक जहमत और दूंगा मैं तुमको।
जी हाँ फरमाइए।
मुझे बहुत जरूरी काम से एक जगह जाना है, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी?
जी मैं वो बाबा को।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
गाड़ी चाहिए?
हाँ
कोई मसला नहीं, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, वापसी पे पहुँचा दूंगा।
ठीक है।
तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है आजी।
क्या खबर है?
ड्राइवर ने एतराफ कर लिया।
अच्छा?
है पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया था।
फोन आया था,
आप भी चलिए।
चलो
तुम यहीं रुको।
अच्छा मैं भी आते
हैं। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम परिया, तुम कैसी हो?
मैं ठीक हूँ।
जेबा के घर जा रहे हैं आप लोग?
हम अपनी खाला के साथ कब्रिस्तान जा रहे हैं।
अरे खुदा ना करे।
असल में उनके यहाँ फातिहा खवानी है।
कैसे हैं आप?
क्या हुआ हाजी?
तुम अभी तक गए नहीं?
असल में मैं परेशान हो गया था कि ये लोग इस वक्त कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं।
कुछ नहीं, हम तलत की कब्र पर जा रहे हैं।
तलत साहिबा? खुदा रहमत करे उन पर। वो तो आपकी पहली बीवी है ना, मैं भी चलता हूँ।
सईद बस भी करो, अभी तो तुम्हें बहुत काम थे।
लेकिन पहले फातिहा पढ़ना जरूरी है। वो मरहुमा जब तक जिंदा थी आपने मिलवाया नहीं कभी उनसे, अब वो इस दुनिया से चली गई हैं, कम से कम उनकी कब्र पे जाके फातिहा तो पढ़ लें।
फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने कैसे फोन किया?
अच्छा आप पेजमान साहब बोल रहे हैं?
जी बोल रहा हूँ।
मैं इंजीनियरिंग कंपनी से बोल रही हूँ, मुझे कुछ काम था।
जी क्या काम था आपको, खैरियत तो है?
आज हमारी कंपनी ने आपको पास किया है और इंटरव्यू के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है। कल सुबह आप इंटरव्यू के लिए 10 बजे आ जाएं, वक्त पे आ जाइएगा।
जी कल सुबह 10 बजे मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
वैसे अगर जेबा साहिबा बात मान जाती तो हम सब एक ही गाड़ी में चलते, अकेली चली गई। खातरा साहिबा की बच्ची बहुत प्यारी बातें करती है। अफसोस है कि उसका बाप नहीं है। हाजी ऐसे क्या देख रहे हो?
मैं देख रहा हूं तुम्हें इस बच्चे की फिक्र कब से हो गई।
जब से उसके बाप का पता चला है मुझे उसकी माँ की भी फिक्र है।
हाँ कहीं ये मजाक तो नहीं है?
क्या तुम्हें मेरे चेहरे से लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ?
नहीं तुम्हारी शक्ल हमेशा की तरह अजीब है।
तारीफ करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको अभी से खुशखबरी देता हूँ कि मेरे इस चेहरे पर बहुत जल्द खुशी, रौनक और मुस्कुराहट नजर आएगी हमेशा आपको।
हाँ तो प्लानिंग भी कर रखी है।
अगर तुम्हारा प्लानिंग से मतलब शादी है तो समझो हाँ है।
कहीं तुम इसका रिश्ता यहीं तो नहीं मांग लोगे? क्यों?
अरे हाजी साहब कब्रिस्तान में ऐसी बातें कहाँ की जाती हैं। लेकिन तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगे।
इस वक्त मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस बारे में सोचता भी नहीं।
नहीं हाजी साहब, नहीं नहीं, आपको मेरी जगह होने का कोई हक नहीं पहुंचता।
तो तुम उस मोहतरम को किस हद तक जानते हो?
मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। वो भी एक बच्ची के साथ तनहा जिंदगी गुजार रही है, लेकिन वो बहुत अच्छी खातून है। मेरी बात सुने हाजी साहब, उसके फजूल बाप के अलावा मुझे तो उसमें कोई खामी नजर नहीं आती।
चलो तुम्हें मुबारक हो।
खैर मुबारक जनाब। अल्लाह इनकी मगफरत करे।
मुझे हैरत है कि तुम अपनी माँ की खबर पर पहले क्यों नहीं आई।
खबर पे? मुझे तो मेरी माँ भी याद नहीं। बस इतना पता है कि उन्होंने जिस शख्स से शादी की वो मुझे नहीं चाहता था। आप तो मेरी माँ को बहुत चाहते थे ना? बस एक सवाल है, उन्होंने उस शख्स से शादी क्यों की?
तुम्हें नहीं पता बेटा, उस मरहूमा ने अपनी जिंदगी में बहुत सख्तियां झेली हैं, वरना तुम ऐसा ना कहती। उसकी तकदीर में यही लिखा था, मुझ जैसा बंदा और जलाल दोनों उसकी जिंदगी में थे। बेटा तुम अपनी माँ को यही माफ कर दो।
तो आप ये सब मुझे बताने के लिए यहाँ लाए हैं?
नहीं नहीं, उसकी कोई और वजह है। देखो हम आज तक तलत के बारे में तफसील से बात नहीं कर पाए। हम दोनों उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं कि तुम्हारी माँ को किस कदर चाहता था मैं, वरना तुम्हें यकीन हो जाता कि तुम मुझे किस कदर अजीज हो। तुम्हारी माँ वो पहली औरत थी जिसे मैंने चाहा था, और तुम निशानी हो उसकी।
क्या आप मर्जिया साहिबा से भी ज्यादा चाहते थे उनको?
मर्जिया अपनी जगह है। जब तलत मुझे छोड़ के गई तो मर्जिया ने मुझे अपनाया। मर्जिया ने मेरा जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। जेबा बेटा, मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया, अब उसकी निशानी को खोना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें बाप की शफकत से महरूम नहीं रहने दूंगा।
क्या आप रोजाना यहाँ आती हैं?
ज्यादा नहीं आती, जब भी यहाँ आती हूँ दुख होता है। जब ये सोचती हूँ कि मेरी माँ मेरी खातिर मर गई तो बहुत अजाब होता है मुझे।
लेकिन इसमें आपका क्या कसूर है?
ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है।
हाँ, एहसास है गुनाह। मैं भी गुनाह महसूस करता हूँ। जहरा के मिलने के बाद कुछ सुकून मिला है, खुदा बेहतर करेगा।
अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा तो सुकून मिला।
अम्मी, क्या अब्बू भी बाहर गए?
जाओ बेटा, गाड़ी में बैठो जाके, हम आते हैं। जब इसके बाबा का इंतकाल हुआ, ये सिर्फ 3 साल की थी।
उनका इंतकाल कैसे हुआ था?
वो मजदूरी करते थे, एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे, नीचे गिर के फौत हो गए।
मेरी बीवी भी एक ट्रैफिक हादसे में मर गई थी, अल्लाह इन सब मरहूमीन को जन्नत नसीब करे। उस वक्त मेरा बेटा 12 साल का था, फिर मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ा सुबह शाम हर तरह से। उसको इतना वक्त नहीं दे सका जितना उसको चाहिए था, लेकिन इसका अफसोस बहुत है। तकदीर के फैसले हैं ये सब। शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा था, फिर भी खुदा का शुक्र है।